व्यासपीठ की तरफ सभी लोग घूम जाइए, व्यासपीठ की तरफ इस तरफ बैठ जाइए।
जय राधा माधव कुंजा बिहारे, जय राधा माधव कुंजा बिहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारे, यमुना तीरावन चारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा वन चारे यमुना तेरा वन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
శిల ప్రభుపాదకి గౌర్ ప్రేమానందే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీరుత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే పరమానంద మాధవం. హరే కృష్ణ. తో ఆజ్ హమ్ భగవద్గీతాకే అధ్యాయ 13 శ్లోక సంఖ్య 17 కే ఊపర్ చర్చా కరేంగే. శ్లోక బోర్డ్ పే आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप कृपया मेरे पीछे पीछे उसको दोहराइए. अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूतभर्तु च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఏవ ఇవ చ స్థితం భూతభర్తు చ తద్గేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణుశ్చ. అవిభక్తం చ భూతేషు విభక్తం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తు చ తద్గేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. కొయి దోహరానా చాయేగా? అవిభక్తం చ భూతేషు భక్తం ఇవ చ స్థితం భూతభర్తు చ తద్గేయం గ్రసిష్ణు ప్రభవిష్ణు చ. अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम् भूतभर्तु च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम् भूतभर्तु च तज्ञेयम् अपिशिष्णु प्रभविष्णु च शब्दार्थ अविभक्तम बिना विभाजन के च भी भूतेषु समस्त जीवों में विभक्तम बटा हुआ इवा मानो च भी स्थितम स्थित भूतभूर्ता भूतभर्तृ समस्त जीवों का पालक च भी तत् वह गेयम जानने योग्य ग्रसिष्णु निगलते हुए संहार करने वाला प्रभविष्णु विकास करते हुए च भी अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदान स्वामी शिल प्रभुपादरा शिल प्रभुपाद की। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वह कभी कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में एक है। यहां पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्यान्ह समय अपने स्थान पर रहता है लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित है लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी हैं और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रही हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वायिमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यन्त विशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। तैत्तिरीय उपनिषद 3.1। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा राज बिहारी की जय। अभी भगवान को भोग लगेगा, 8:30 बजे पट खुलेंगे, तब तक आप कृपया इस प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण भ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 13। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना और श्लोक संख्या है 17। इस अध्याय में इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुम इच्छामि ज्ञानम गेयम च केशव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण मैं प्रकृति एवं पुरुष क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं गेयम के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो यहां पे अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान तथा गेय इन छह चीजों के बारे में जानना चाहता हूं कि प्रकृति क्या है और पुरुष कौन है मींस भोक्ता, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, गेय ज्ञान तथा गेय क्या है। इन छह चीजों के उत्तर में भगवान आगे के श्लोक बता रहे हैं। इसमें से हम 17वां श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभु विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि परमात्मा जो है, भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो यहां पे किसी किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि अगर भगवान सबके मन में सबके हृदय में विराजमान है तो क्या भगवान विभक्त हो गए हैं? अगर किसी वस्तु को हम अलग 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 जगहों में अलग अलग उसके पीसेस करके रख देंगे, टुकड़े करके रख देंगे, तो वो वस्तु नहीं रहेगी, उन टुकड़ों में बढ़ जाएगी, है ना। भौतिक जगत में हम इसी तरह देखते हैं। अगर आपको एक फ्रूट दिया जाए, एक फल दिया जाए और 10 प्लेटें दी जाए, इसमें उस फ्रूट को काट के रखना है आपको, तो उस फ्रूट को आप काटेंगे और 10 प्लेटों में रखेंगे तो फ्रूट फ्रूट रहेगा क्या? वो कटा हुआ पीस हो जाएगा, हर एक प्लेट में एक एक पीस आपको दिखाई देगा। तो इसी प्रकार किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि भगवान अगर हर एक जीवात्मा के हृदय में है तो क्या वो भी बट गए हैं, क्या वो भी विभाजित हो गए हैं, क्या इससे फिर परमात्मा का जो जो पहले का स्वरूप था वो विभाजित हो गया, अब वो नहीं रहे? ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है। भगवान कभी विभाजित नहीं होते हैं, वो हरेक के हृदय में उसी तरह विराजमान है जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य, जो 12 बजे जो सूर्य की स्थिति होती है, आप देखेंगे कि आपको लगता है कि सूर्य मेरे सर के ऊपर है। तो हर कोई अगर उसी टाइम पे देखेगा और उसको पूछा जाएगा कि सूर्य कहां है, तो हर कोई बोलेगा कि मेरे सर के ऊपर है। तो हरेक के ऊपर अगर सूर्य है, सर के ऊपर सूर्य, तो क्या सूर्य विभाजित हो गया? सूर्य विभाजित हो गया है कि सूर्य वही है? सूर्य वही रहता है, लेकिन हमको लगता है कि वो मेरे सर के ऊपर। इसी प्रकार परमात्मा सबके हृदय में है, लेकिन परमात्मा विभाजित नहीं हुए हैं। जैसे सूर्य एक ही जगह स्थित रहकर सबको लगता है कि मेरे सर के ऊपर है, इसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप होता है सबके हृदय में। तो हमारे शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं। प्रायः लोगों की भावना होती है कि हम शरीर हैं और शरीर के ही लिए सब कर्म करने लगते हैं। आज हम जो कुछ भी करते हैं, श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में पहले अध्याय में तीसरा श्लोक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अर्थात ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्त गृहमेदी का जीवन रात्रि में या तो सोने में या मैथुन में रथ रहने में, तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। जो अभी जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में शरीर अभिनिवेश ज्यादा होता है, अर्थात कि मनुष्य जो भी कार्य करता है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए सब कार्य करता है। आप कौन सा भी कार्य पकड़ के रखिए, पैसा भी कमाते हैं तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए, मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो, रहने के लिए अच्छा घर हो, अच्छे कंफर्ट्स हो, मेरे बीबी बच्चों के लिए मैं अच्छा जीवन दे सकूं, अच्छी लाइफस्टाइल दे सकूं, इसी के लिए हो रहा है। सब लोग इसी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये जो सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये सुख आपको सुख दे रहा है या दुख दे रहा है, इसकी थोड़ी आप चिंता करते हैं? इस भौतिक दुनिया में सुख उतना ही है जितना कि आप किसी मरुस्थल में जाए और आपको सामने मरुभूमि में आप कभी देखे तो मृग जल दिखाई देता है। जल तो दिखाई देता है, लेकिन आप उसके पास जाएंगे तो जल नहीं रहता है। इसी तरह इस दुनिया का सुख है। हम चाहते थे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो रहा है, यह हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। मन चाहे तो सुख है, मन चाहे तो, कोई कोई बड़े से बड़े बंगले में भी रह के भी उसको नींद नहीं आती, लेकिन राह चरता भिखारी भी फुटपाथ पे बहुत गहरी नींद सोता है। क्या रीजन है? इसके पास तो एसी है, डनलप की गद्दी है, लेकिन नींद नहीं आ रही, लेकिन राह चलते भिखारी को फुटपाथ पे भी नींद आती है। कठोपनिषद में बताया गया है, मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। सब लोग सोचते हैं कि कुछ कष्ट आएगा तो मेरे परिवार वाले मेरे को बचा लेंगे, कुछ होगा तो मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। लेकिन मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि वो कब उसका दिन आखिरी दिन होगा। तो इस जीवन में आप धन दौलत तक कमा रहे हैं, लेकिन वो दौलत कमाइए जो आपके मरने के बाद भी साथ में जाएगी। वो पॉलिसी है ना, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन क्या वो पॉलिसी आपकी जिंदगी के बाद आती है साथ में? आपके घर वाले ऐश करते हैं, आपके साथ नहीं जाती है। तो ऐसी पॉलिसी है भगवान कृष्ण की जो आपके जिंदगी के बाद भी साथ में जाएगी। वो है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम यो केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति रन्यथा। इस कलयुग में एक ही मुक्ति का साधन बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र। इस मंत्र को आप रोज कभी भी और कहीं भी जाप कर सकते हैं। बहुत सरल मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने पैसे गए आपके जेब से? गए कुछ? बहुत आसान है ये धन कमाना। आप बाहर धन कमाने जाओगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। इसके लिए कुछ सरल साधन है, गोलोक प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। एक गोलोक से आया हुआ धन है, यही आपके साथ जाएगा। तो इसको करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चलते चलते बैठे बैठे आप ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, लोकल में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसको खाली जोर से उच्चारण करना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। जितना आप इसके साउंड वाइब्रेशन ध्यान से सुनोगे उसका इफेक्ट बहुत जल्दी होगा आपके ऊपर। बहुत सरल विधि बताई गई है कलयुग में। कलयुग में आपको ध्यान धारणा करने की, एक जगह बैठ के ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं, हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि भगवान को अर्जुन कहता है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहता है, भगवान ये मन इतना चंचल है कि इसके ऊपर काबू कर पाना बहुत कठिन है। मैं तूफान को रोक सकता हूं, मैं वायु को रोक सकता हूं, लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये अर्जुन की बात है, जो भगवान के साथ रहता था, भगवान का शुद्ध भक्त है, वो ये कह रहा, तो हम किस खेत की मूली हैं? लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, मंत्रा मेडिटेशन अगर करते हैं, मंत्र का अर्थ होता है मनत त्रायते इति मंत्र, जो मन को कंट्रोल करे वही मंत्र। अगर आप इस मंत्र को ध्यान पूर्वक जाप करते हैं तो धीरे धीरे जो है मन आपकी सुनने लगता है। आजकल हम बोलते हैं कि मैं मन का राजा हूं, मेरे मन में जो आए वैसा मैं करता हूं, लेकिन सच में आप मन के राजा हो क्या? अगर मन के राजा होते तो आप जैसे बोलते वैसे मन करता, लेकिन आप अभी क्या करते हैं? जैसा आपका मन कहता है वैसा आप करते हैं। तो आप मन के गुलाम हैं, हम सब लोग मन के गुलाम हैं, और सोचते हैं कि हम मन के राजा हैं, मैं मन माफिक करता हूं। देखिए, जैसे कठोपनिषद में मैं पहले बोला था, मन एव मनुष्यानाम कारणम मंदमोक्षो। ये जो मन है, ये मन मनुष्य का शत्रु भी है और मित्र भी है। अगर मन आपके कंट्रोल में नहीं है तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है आपका, और मन अगर आपके कंट्रोल में है तो इससे बड़ा मित्र नहीं है आपका। तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए यह मंत्रा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। कुछ करना नहीं है आपको, बस खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और उसको ध्यान पूर्वक सुनना है, बस इतना ही करना है। कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए और जो भगवद गीता है, भगवान की वाणी है, अभी पिछली जो एकादशी गई है वो मोक्षदा एकादशी गई है, इसी एकादशी को भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता सुनाई थी। तो आप अभी जहां से जाएंगे तो आपके पास एक गीता जरूर रखी है, उस गीता को भी आप रोज पठन कर सकते हैं। देखिए, गीता के महात्म्य के बारे में एक श्लोक आता है, कहते हैं मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता मृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त होता है। मनुष्य जो है रोज स्नान करता है, इससे वह अपने को स्वच्छ करता है, अपने शरीर को स्वच्छ करता है, लेकिन अपने हृदय को, आपके हृदय को अगर स्वच्छ करना है तो इस गीता रूपी जल में आप स्नान कीजिए। मीन्स इस गीता का आप पूरा पाठ नहीं कर सकते, एक श्लोक तो पढ़ सकते हैं, 5 मिनट रोज आपको पढ़ना है बस गीता। दो चीजें कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र को 10 मिनट बोलिए रोज और 5 मिनट गीता पढ़िए, ये डेली रूटीन बनी है। आप 15 मिनट दीजिए बस आप भगवान के लिए, देखिए परिवर्तन अपने आप हो जाएगा आपके अंदर, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद मेरा अनुभव कह रहा है, इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले मेरी ऐसी लाइफस्टाइल थी कि मैं कभी उगता हुआ सूरज नहीं देखता था, मेरा दिन दोपहर को 1 बजे चालू होता था। लेकिन ऐसे ही भगवत गीता जयंती के महीने में इस्कॉन वाले जो गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इस्कॉन से एक बस जाती है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैंने एक गीता ऐसे ही थमा दी किसी भक्त ने मेरे पास, और वो मैं घर पे लेके आया और मुझे रीडिंग का शौक था तो मैं वो गीता पढ़ने लगा था डेली धीरे 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 धीरे। मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा, लेकिन ये गीता के पढ़ने से और हरे कृष्ण महामंत्र के जपने से ये चमत्कार हुआ है, होता है। आप भी प्रयास कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने इस गोलोक धन को हमारे लिए सबके लिए खुला कर दिया है। मंत्र एकदम सीधा सिंपल लगता है आपको, आपको लगता है क्या ये सादा सिंपल मंत्र है, कुछ अलग मंत्र होना चाहिए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। आजकल लोगों को कॉम्प्लिकेटेड चीजें बहुत पसंद आती है, कुछ अगर कुछ इधर उधर से कुछ ज्यादा उच्चारण में उसको बड़ी कठिनाई हो रही हो, ऐसा कोई मंत्र बोल दे तो बड़े अटक नहीं, कुछ तो है भाई, उच्चारण में ही इतना तकलीफ हो रहा है तो कुछ तो होगा इस मंत्र में, कुछ नहीं होता। लेकिन ये हरे कृष्ण महामंत्र हर कोई बोल सकता है, कभी भी कर सकता है, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। अभी भगवान के पट खुलेंगे तो आप भगवान का दर्शन कीजिए, और जाते वक्त एक भगवद्गीता जरूर लेके जाइए। हरे कृष्णा।